शांति, ओम शांति। कहा जाता है कि कर्म की गति अति गहन है और साधारण मनुष्य उस कर्म की गति को समझता नहीं है। अर्थात कर्म की गति में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, कितने प्रश्न उठते हैं, शंका उठती है, चिंता जागती है, डर लगता है, आश्चर्य भी खाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि कर्म की गति का ज्ञान मैं ही आकर के देता हूं, मनुष्य नहीं समझ सकते, इसलिए उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं। और अगर कर्म की गति को सही रूप से समझ जाए तो कभी प्रश्न नहीं उठेंगे, कभी आश्चर्य नहीं खाएंगे, कभी भी डर नहीं लगेगा, कभी भी चिंता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाबा ने अपनी रचना का भेद भी बता दिया है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए साक्षी होकर के देखो। जो साक्षी होता है वो प्रश्न नहीं पूछता है, साक्षी नहीं है तभी प्रश्न पूछते हैं। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं माना साक्षी नहीं है, तो साक्षी होके भी देखना है और साथ साथ पाठ भी बजाना है। तो कर्म कर्म विकर्म की गति क्या है? बाबा कहते हैं कर्म तो जरूर करना है इस कर्म क्षेत्र पर, कर्म के बिना तो आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर रह नहीं सकती। उसके लिए वस्त्र मिला हुआ है देह का, लेकिन कौन सा कर्म करना है ये है बड़ी बात। तो बाबा फिर अपनी रचना का राज भी समझाते हैं कि जब आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं तब ये सब कर्म अकर्म बन जाते हैं, उनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है तो अकर्म बनते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा खुद को भूली, देह अभिमान में आई, तो फिर कर्म विकर्म बन जाते हैं, और कर्म विकर्म बनते बनते आत्मा पतित बन जाती है, शरीर भी पतित बन जाता है, पाप आत्मा कहलाती है। फिर संगम युग पर जब बाप आते हैं तो आत्मा का ज्ञान देते हैं, तब तक आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, भले कहते हैं लेकिन वो सत्य ज्ञान जो बाप सुनाते हैं आत्मा के बारे में वो तो है नहीं। और जब आत्मा का ज्ञान बाबा देते हैं और आत्मा अभिमानी होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, जिनकी प्रारब्ध बहुत ऊंची है, परंतु शरीर तो पतित है। इसलिए सत्कर्म तब होते हैं जब आत्मा पवित्र बनती है पर शरीर तो अपवित्र ही है, पर सत्कर्म करके आत्मा को पवित्र बनाकर फिर उस श्रेष्ठ सत्कर्मों का फल आत्मा भोगती है। ये सब बाबा कर्म की गुह्य गति बताते हैं। तो आज की बाबा की मुरली भी इसी प्रकार है, और बाबा की मुरली के बाद मम्मा की भी मुरली है, वो भी कर्म की गति पर ही मुरली है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 15/9/2025 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ होते हैं कर्म अकर्म? जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, वो तो सतयुग में ही होते हैं। इसीलिए आत्मा अकर्म सतयुगी दुनिया में करती है। पतित होने से, पतित कैसे बनते हैं? देह अभिमान में आते हैं तो द्वापुर से बनते हैं, तो विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है? क्यों पतित बनती है? क्या खाद पड़ती है? तो बाबा कहते हैं, आत्मा पर कट यानी जंक चढ़ने का कारण क्या है और कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? जंक लग गई है तो क्या निशानी होगी, कैसा व्यवहार होगा उस आत्मा का? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार, और विकारों का कारण है देह अभिमान। तो जैसे देह अभिमान में आए द्वापुर से, आत्मा विकारों के वश हुई और कट चढ़नी शुरू हुई, जंक आत्मा को लगने लगी। तो कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो कैसे पता चलता है कि अभी तक कट चढ़ी हुई है? तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, जिसके ऊपर बहुत कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है, तो शिव बाबा जो चुंबक है वो तो आकर्षित नहीं कर पाएगी, लेकिन दुनिया का आकर्षण उसको खींचेगा। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगी वो आत्मा, क्योंकि जंग अभी तक चढ़ी हुई है। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं ओम शांति का। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है क्या, कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है। शांति माना आत्मा शांति धाम की रहवासी है, तो यहाँ की रहवासी नहीं है, हम तो शांति धाम की रहवासी है। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं, हमारा स्वधर्म शांत है जब हम घर में रहते हैं, फिर यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है तो पाठ बजाते हैं शरीर के साथ। आत्मा कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा। तो अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, बाबा कहते वो भी मनुष्य नहीं समझते हैं। कर्म होता है एक अच्छा दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है कहाँ? रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। कोई भी किसी का भी कर्म कलयुगी दुनिया में सुकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि सब देह अभिमान वश कर्म कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं है, तो सब विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो, क्योंकि हर कर्म देह अभिमान से हो रहा है, तो हर कर्म विकर्म बन रहा है। तो समझो, बताओ कितने विकर्मों का बोझा होगा हमारे सिर पर। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो। मनुष्य तो समझते हैं कि साधु संन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता है, वो पवित्र रहते हैं, घर बार छोड़ा है, वो विकारों को जीतते हैं, तो उनसे कोई विकर्म नहीं होता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, संन्यास किया हुआ है। अब बाबा क्या समझाते हैं, वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। भले कोई कहे कि ये नहीं कोई अपवित्र कर्म करते हैं और अपवित्र है, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये भी बिल्कुल कोई नहीं जानता है। कहते भी हैं हम पतित हैं तो किसको हम पावन कहेंगे, क्योंकि भले वो पवित्र रहते हैं लेकिन शरीर तो अपवित्र है ना, वो तो कोई पवित्र शरीर नहीं है, तो इसलिए उनको पावन तो नहीं कहेंगे। पावन तो उनको ही कहेंगे जिनका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो, तो चलो पवित्र बनते हैं ठीक है, लेकिन पावन नहीं कहेंगे, वो केवल देवताएं ही हैं। तो बाबा कहते हैं, कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं, जब तक वो न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। ये भी बहुत बड़ी बात है, जब तक वो पतित पावन न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ ये पतित दुनिया पुरानी दुनिया है, इसीलिए पावन दुनिया को याद करते हैं, स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। पतित को क्यों याद करें, जो नीचे गिरा हुआ उसको क्यों याद करें, जो ऊंचे हैं वो नीचे को गिरे हुए को याद नहीं करेंगे, पर जो नीचे गिरे हुए हैं वो ऊंचे को याद करते हैं। तो पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, वो दुनिया ही अलग है, वो पावन दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना, नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। वो पतित पावन है, पावन बनाने वाला, तो जब वो नई रचना रचते हैं तो रचना तो पावन ही होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये भी बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर के समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। अचानक संशय उठ जाता है, निश्चय बुद्धि हो के ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ करते रहे पर अचानक संशय बुद्धि बन जाते हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। क्यों संशय बुद्धि हो जाते हैं, माया एकदम फिर हप्पी कर लेती है, इतने संशय बुद्धि हो जाते हैं जो माया उनको खा भी जाती है। तुम महारथी हो ना, तो महारथियों को भी भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। महाराजाओं को क्या समझाना है, अभी आए थे ना राजा महाराजा के वंशज, तो उनको ये बाबा कहते समझाना है कि तुम ही पहले पावन पवित्र थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे, तो महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाना होता है। भगवानोवाच, हम ये भी नशे से समझा सकते हैं, भगवानोवाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हैं। अब जो भी समझाते हैं वो तो काम चिता पर बैठ न सके, अब दूसरों को समझाते हैं कि हमें पतित से पावन बनना है, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है, तो बाबा कहते वो तो फिर काम चिता पर नहीं बैठ सकते ना। अब जो भी समझाते हैं वो तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी हैं, क्या है, ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं। देखो कैसे हैं, दूसरों को समझाते और फिर खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, आज ये समझाते कल खुद विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। बात मत पूछो कब कहा जाता है, जब और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अति हो गया। बात मत पूछो, औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं। कामचिता पर बैठे, मुंह काला किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर बाद में थोड़ा जागते हैं, पछताते हैं, फिर पछताते हैं, ये क्या हुआ, मुझे क्या हो गया। बॉक्सिंग है ना माया की, स्त्री को देखा और कशिश हुई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना सौ गुणा दंड पड़ जाता है। बाबा के बने प्रतिज्ञा भी की और फिर गिर पड़े तो सौ गुणा दंड पड़ जाता है। वो तो जैसे सौ गुणा दंड भी पड़ा पतित बना तो वो तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, ऐसे शास्त्रों में कई कहानियां हैं। असुर छिप छिप कर आके अमृत पी लिया, फिर बाहर जाकर के सताता है दूसरों को। अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। अब ताली तो दो हाथ से बजती है, काम विकार में बाबा कहते ताली तो दो हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते हैं। समझते हैं अगर मैं बताऊंगा तो कहां ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम न हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है ना, और वो भी कोई महारथी। वैसे भी युद्ध में कोई आर्मी में एयरफोर्स में मना, वो महारथी था, बहुत होशियार था, उसका वर्णन आया, वो कैसे कैसे उसने क्या नहीं कारनामे किए, बहुत सुंदर उसका करियर था। और अचानक वो मर गया, अचानक हार्ट फेल हो गया, या जहां भी हो गया, या जो भी उनका लड़ाई में मर गया। तो बाबा कहते हैं युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, मरते हैं तो ये चलो हारते हैं तो हाहाकार होता है, अरे ये बड़ा कैप्टन वो मर गया, बहुत बड़ा योद्धा था वो मर गया। तो बाबा कहते हाहाकार हो जाते हैं, हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, कैसे इसको हरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बन गए। राम को भी काला बना देते हैं सब। देखो अब साउथ इंडिया में जाइए, जितनी भी मूर्तियां अधिकतर सब काली, यहाँ सब काला दिखाते हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। देवताएं तो कई है लेकिन मुख्य है की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, यहाँ है ना रघुनाथ मंदिर, उसमें भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए, वो पुजारियों से, काला क्यों बनाया है, तो कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, ईश्वर की भावी है काला बनाया, ये तो चलता आता है, क्यों होता है क्या होता है ये कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुमको बाप समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है, वाम मार्ग में आने से फिर वो देवता नहीं कहलाते हैं। जगतनाथ के मंदिर में भी ऊपर में देवताओं के देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं, है ना। पहले तो बहुत था जगन्नाथ मंदिर के जो बाहर वो जो उनका जो बनाते थे उस पर बहुत गंदे गंदे चित्र थे, अभी तो हटा दिया है। तो ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। तो बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए ना। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं, वहां भी श्रीनाथ का जो चित्र है, श्री कृष्ण का चित्र है छोटा सा दिखाते हैं, उसके हाथ में गोवर्धन पर्वत है, क्या उनकी पूजा होती है, क्या भीड़ लगती है, बात मत पूछो। इतनी भीड़ लगती है बस एक सेकंड का दर्शन करने लिए, एक सेकंड वहां खड़े नहीं होने देते। तो बाबा कई बार कहते हैं वो उनके हाथ में वंगूछा होता है बड़ा टावल, है ना, तो उसको ऐसे करते रहते ऐसे करते रहते, चलो 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 चलो, एक सेकंड भी खड़ा नहीं होने देते। तो ऐसे है, तो बाबा कहते वो काला चित्र दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है, ये समझाना तो बहुत अच्छा है, वो है गोल्डन एज, ये है आयरन एज, कट चढ़ जाती है, क्यों काला बन गया, कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है, जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती है, बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अगर कशिश हो रही है पुरानी दुनिया में, हाँ घूमो ये करो वो करो, तो बाबा कहते इसका मतलब है कि आत्मा रूपी सुई पर कट चढ़ी हुई है। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से, पतित भी उनसे बने हैं काम विकार से। तो अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। तो अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है तो मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं, शुरू से यज्ञ की शुरुआत से, जैसे शिव बाबा ने हाँ कहा फरमान दिया कि अभी पवित्र और योगी बनना है, तो बस बाबा कहते हैं झगड़े चालू हुए। तो शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं, बाप ने ही ये युक्ति रची, बाबा ने ये युक्ति रची। हाँ सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, तो बाबा के पास आ गए, बाबा को कहा कि हमको यहीं रखो। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी रख सकते हैं, पहले अपने माँ बाप से चिट्ठी लेकर आओ और चिट्ठी में क्या लिखाओ कि मैं ज्ञान अमृत पीने के लिए मातेश्वरी, ममा का नाम डाला, मैं ज्ञान अमृत पीने के लिए माँ के पास, जगदम्बा माँ के पास जा रही हूँ, तो ये पत्र लिख कर आओ। तो वो लिख कर आए और फिर जब रहने लगे थोड़ा, तो फिर जब वापस बुलाया तो कहा कि अभी फिर शादी करो, तो कहा हमने तो अभी अमृत पिया है, अभी अमृत पिया है तो हम विष कैसे पी सकते हैं। तो बाबा कहते युक्ति रची बाबा ने, जो उनको का पत्र ले आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने के लिए जगदम्बा माँ के पास जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं कहा कि ब्रह्मा के पास, क्योंकि बहने थी तो ममा को आगे रखा था। तो बाबा कहते हैं तो बाप ने ही ये युक्ति रची, सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते, पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है, यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे, चलो जब पवित्र बनते भी हैं फिर कहाँ जाएंगे, पावन दुनिया तो अभी बनी नहीं है, तो यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता, क्या पता उनको कहेंगे मोक्ष को पाया, उनको क्या पता कि अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि कुछ नहीं कर सकते, पिंड भरते हैं ना, क्या क्या श्राद्ध करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कई कई कार्य क्रियाक्रम करते हैं। तो बाबा कहते वो तो स्वर्ग में चला गया, वो तो मोक्ष को पा लिया, खत्म। तो फिर ये सब क्यों करते हैं उसके बाद? अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं, डेड बॉडी के आगे ज्योति जगाते ना, कि उनको कोई तकलीफ ना हो, उन आत्मा के आगे कोई अंधकार ना आए। तो डेड बॉडी के आगे ज्योति जगाते हैं, अंधकार में कहीं ठोकरे ना खाए आत्मा, इसलिए ज्योति जगाते हैं। अब आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, एक सेकंड में। बाबा कहते हैं यहां से गई सीधा अमेरिका लंदन पहुंच गई एक सेकंड में, तो उनको उनको क्या अंधेरा लगेगा? आत्मा खुद ही एक ज्योति है तो उनको क्या अंधेरा लगेगा? तो बाबा कहते हैं अंधेरा फिर कहां से आया? ये रस्म चली आती है ज्योत जगाने की। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो, इतना सारा जो कुछ भक्ति मार्ग में क्रियाक्रम बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं वो तुम कुछ नहीं करते हो, तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं है। सत्युग में रस्म रिवाज नहीं होगी कि डेड बॉडी के आगे कई दीवा दिया जलाएंगे, तो पता है आत्मा तो चली गई, फिर तो मोक्ष को पाइए तो नहीं कहेंगे, तुरंत जाके दूसरा जन्म लिया, वो तो उनको पता है। तो बाबा कहते हैं या वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं, आजकल रिद्धि सिद्धि की बातें भी कुछ रखा, रिद्धि सिद्धि की बातों में भी कुछ रखा नहीं है, बहुत रिद्धि सिद्धि चलती है आजकल, तो बात नहीं पूछो। समझो कोई ने रिद्धि सिद्धि के द्वारा माना किसी को पंख दिला दिए, पंख आ गए उसको, अब पंख आ गए और वो उड़ने लगा, वैसे होता नहीं है, लेकिन समझो कोई कहे पंख आते हैं उड़ने लगते हैं, फिर बाबा कहते अच्छा फिर क्या, चलो उड़ने लगा फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा? अब पहले तो एक था, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, किसी व्यक्ति ने कहा मेरे अंदर इतनी योग की शक्ति है कि मैं पानी पर चल सकता हूँ, तो पानी पर चल सकता हूँ, तो उसने क्या किया एक टंकी बनाई और सीढ़ियाँ रखी और पानी टंकी पर वो चढ़ गया, पानी था उसमें, और उससे और टिकटें बेची, कई लोग गए देखने के लिए ये पानी पर कैसे चलता है। तो टिकटें बेची और जैसे धीरे धीरे वो टंकी के ऊपर आया और पहला ही पाँव रखा तुरंत नीचे चला गया। अब उसके बाद पता नहीं कहाँ भाग गया, हाँ तो अखबारों में आ गया कि उसने कहा मैं पानी पर चलूंगा और पहला ही पाँव रखने से 9-2-11 हो गया, पता नहीं कहाँ भाग गया, हाँ कैसे। तो लोग कहे हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, ये मुंबई का किस्सा है, तो वो अखबारों में आ गया 9-2-11 हो गया वो। तो बाबा कहते हैं चलो पानी पर चला भी क्या फायदा। एक बार दादी जानकी जी बता रहे थे लंदन में, एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि मैं अग्नि पर चलता हूँ चल सकता हूँ, तो दावा किया मैं अग्नि पर अग्नि में चल सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो सचमुच वो चला और बाद में देखा तो उसको कुछ नहीं आया, तो सबने दादी को बताया दादी वो अग्नि पर चला, तो दादी ने कहा इसमें क्या हुआ, चलो कुछ लगा दिया होगा लेप कोई शरीर पर और एकदम कपड़े मना ऊपर के उतार करके भी वो गया और कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ लगा दिया होगा, कई फायर ब्रिगेड वाले भी तो घुसते हैं ना आग में। तो बाबा कहते इसे चलो क्या हुआ, क्या उससे कोई पावन थोड़ी बना, उससे कोई सतयुग में थोड़ी गया। तो बाबा कहते हैं फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फायदा तो उसमें है ना, भगवान को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है, कोई पानी पर चलने की या आग के थ्रू जाने की बात नहीं है, ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, और ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु भी हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम, क्योंकि शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सब शक्ति को नष्ट करता है भोगी, तो उसकी आयु भी बहुत कम हो जाती है। तो भोगी की कम और योगी की आयु बड़ी होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं ना, ईश्वर की याद से कृष्ण बनाए। क्यों योगेश्वर कहते, इसलिए नहीं कि योग सिखाया, पर ईश्वर की याद से वो श्री कृष्ण बना, इसलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, सत्ययुग में थोड़ी श्री कृष्ण को योगेश्वर कहेंगे, वो तो प्रिंस है, राजकुमार है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है, परमात्मा से योग लगाया और श्री कृष्ण बना, तो पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना ये है सबसे बड़ा पाप, अंडरलाइन, विकार में जाना ये है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई है। हाँ, भाई बहन क्यों कहते, क्योंकि ब्रह्मा की संतान बनते हैं, तो अलौकिक की अलौकिक बन जाते हैं ब्रह्मा की संतान, तो फिर भाई बहन बन जाते हैं, और आत्मा रूप में शिव बाबा की संतान सब भाई भाई है, तो सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई है। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल एसॉल्ट कैसे करते हैं हम? बी के विकार में जा नहीं सकते। अगर अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, ब्रह्मा का की संतान कहलाते हैं, तो फिर विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हरेक आत्मा पाप पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है हर आत्मा पवित्र बन जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, घर घर में सोजरा, जो सत्युग में होता है, घर घर में सोजरा रोशनी। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग में सब पवित्र ही रहते हैं, वो भी तुम अभी समझते हो कि सत्युग में सब पवित्र ही रहते हैं। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबर वार ताकत रहती है, सब तो एक जैसा नहीं समझा सकते हैं, तो नंबर वार ताकत रहती है समझाने की। नंबर वार याद में भी रहते हैं, सब नंबर वार है, याद भी नंबर वार, समझाने की ताकत भी नंबर वार, धारणा भी नंबर वार, ज्ञान बुद्धि में बैठना भी नंबर वार, सब नंबर वार, नंबर वार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। क्यों नंबर वार है, क्योंकि राजधानी में भी सब पद नंबर वार है, तो यहाँ भी सब नंबर वार होगा। तो बाबा कहते राजधानी कैसे स्थापन होती है ये भी कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सोने का चम्मच मुंह में, का मतलब धनवान घर में जन्म लेंगे। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी तो बड़ा पाते हैं ना, फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना मर्तबा ऊंचा, और जितना मर्तबा ऊंचा उतना सुख, धनवान बनेगा तो धन का तो सुख मिलेगा। अब यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, वो लौकिक पढ़ाई से भी ऊंचा पद पाकर धनवान बनते हैं, यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। ये नशा चढ़ा रहना चाहिए सदा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। चोब चीनी मिलती है, ये मुरली क्या है, चोब चीनी, चोब चीनी माना तरावती माल, माजून, आत्मा के लिए शक्ति। चोब चीनी यानी ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। अब पढ़ते पढ़ते बाबा का ज्ञान, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। दे अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है जब दे अभिमान में आते हैं, क्योंकि उस समय उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो दे अभिमान है ना, तो ज्ञान का नेत्र तो बंद हो गया। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, भगवान कोई कम मेहनत करते हैं क्या? क्या मेहनत करते हैं भगवान? बाबा कहते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ब्रह्मा के तन में आकर रोज मुरली सुनाते हैं, रोज बच्चों को का श्रृंगार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ब्रह्मा के तन में आकर। लेकिन समझ कर फिर भी कह देते ऐसे ही थोड़ी हो सकता है। समझते भी है कि ये ईश्वरीय महावाक्य है, भगवान के महावाक्य है। इन महावाक्यों को सुनने से, जीवन में लाने से हम पतित से पावन बनेंगे, पर फिर क्या हो जाता है, अचानक संशय आ जाता है। फिर कहते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, भगवान आके पढ़ाते हैं, तो कहाँ सुना ही नहीं है। ये ऐसे कैसे के दावा करते हैं कि शिव बाबा कर पढ़ाते, हम नहीं मानते। फिर और आगे क्या कहते, ये तो चालाकी है, ये चालाकी है इनकी जो कहते हैं कि भगवान आकर इनमें पढ़ाते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। अब राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, चलो वो कुछ भी माने, पुरुषार्थ न भी करे, कुछ भी करे, पर बाबा का जो कार्य है वो रुकना नहीं है। सत्युगी दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। तो बाबा कहते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, कहते हैं ना राजाई स्थापन हो जाएगी, इस कितना निश्चय है। तो उस निश्चय की कौन से शब्द कहे जाते हैं, निश्चय के शब्द कौन से होते हैं, कि सच की बेड़ी, सच की नाव हिलती है परंतु डूबती नहीं है। ये है निश्चय के बोल, कितना भी हिलाने की कोशिश की इस नाव को, परंतु डूबी नहीं, और ही बढ़ती गई बढ़ती गई। अभी तो मानते हैं लोग, बहुत मानते हैं, तभी तो देखो इतने नीचे आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में इतने आते हैं जो रोकना पड़ता है कि अभी नहीं आओ। तो कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं, कितने विघ्न पड़ते हैं फिर भी भगवान का कार्य रुक नहीं सकता। अच्छा उसके पीछे मम्मा की दो मुरलियां हैं, बहुत ही गहरी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे नूरे रत्न, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक्क व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, योग की अग्नि से विकारों की कठ को उतारना है। योग की अग्नि से विकारों की कठ को उतारना है, अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बधाई हो तो वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा के बधाइयां देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन, अपना सरल स्वभाव बना लो। अपना सरल स्वभाव बना लो, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। रिजिड बनते न कहीं, जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए, ठीक है जैसे है चलो ठीक है। अपना सरल स्वभाव बना लो, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हेडिंग है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी मामा कहती है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, वही फिर पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। उतरना फिर चढ़ना ये ड्रामा का अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो फिर किसी ने, अब जब मम्मा जब सुनाती थी तो कोई ऐसे हजारों की तो सभा नहीं होती थी, मम्मा तो क्लास में ही सुनाती थी, मुरली चलाती थी, क्लास के स्टूडेंट्स होते थे, कोई नए भी आ जाते थे मम्मा की क्लास में, उनको ले आते थे। तो कोई एक ऐसा जिज्ञासु था, उसने मम्मा से प्रश्न किया। बड़ा ये सबका प्रश्न है, तो इसीलिए ये प्रश्न क्या किया, मातेश्वरी जी मेरा भी ये प्रश्न उठता है, क्योंकि मम्मा ने कहा ना ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो मम्मा से उसने प्रश्न किया कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, चढ़ना उतरना फिर चढ़ना उतरना, ये जब ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे ना, क्योंकि चढ़ना उतरने का खेल है ये, तो आप ही चढ़ेंगे। फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ, फिर पुरुषार्थ ही क्यों करें जबकि आप ही चढ़ना उतरना। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। है ना, कईयों के प्रश्न बहुत उठते हैं, फिर पुरुषार्थ ही क्यों करें। तो मातेश्वरी या मम्मा को मातेश्वरी कह के बुलाते थे, कोई नया होगा तो मम्मा से पूछता है, आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑल माइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। मेरे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, और फिर ये, और ये हूबहू रिपीट होता है, और साक्षियों के भगवान देखता ही रहता है, तो थकता नहीं है क्या भगवान भी, ऐसे प्रश्न किया उसने। तो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है क्या? जैसे चार रूप, तो मम्मा ने फिर क्या समझाया? नहीं, फिर उसने और प्रश्न किया, जैसे चार ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ता? वो खेल, वो तो फर्क पड़ गया, इतनी गर्मी थी, फिर बारिश आई, फिर बारिश खत्म होगी, फिर सर्दी चालू होगी, तो फर्क पड़ता है। तो क्या इस ड्रामा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब मम्मा ने क्या जवाब दिया? बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, यही खूबी है, हू बहू रिपीट होता है, ये इसकी खूबी है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, एक तो हू बहू रिपीट होता है, ये इसकी खूबी है, और दूसरा जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है, नित्य नया लगता है। कई ऐसे आते हैं, एक उस दिन भी एक व्यक्ति आया था, वो कहता है मैंने पहले दो शादी कर ली, पहले शादी की मैं परेशान हो गया, डाइवोर्स कर दिया, फिर दूसरी शादी की उससे भी परेशान हो गया, डाइवोर्स कर दिया, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो और ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों ड्रामा ऐसे बना, ये अगले कल्प की बात, फिर भी दो शादी होगी क्या मेरी? तो मैंने कहा अभी तो कम से कम सुधर जाओ, अभी तो तुम बाबा के बच्चे बन जाओ, अभी भी करोगे फिर भी डाइवोर्स दे दोगे तो फायदा क्या? तो पश्चाताप तो कर रहे हो, तो अभी तो सुधर जाओ। तो कहा फिर अगले कल्प में फिर यही होगा क्या? ऐसे कुछ बन सकता है जो अगले कल्प में ये शादी डाइवोर्स ना हो? हमने कहा नहीं, अगले कल्प में भी होगा। बेचारा एकदम आंखें उसकी खुल गई। तो हमने कहा बस ये है कि आप अभी अपने ऊपर पुरुषार्थ करो कि आगे मुझे क्या करना है, तो सोच समझ कर कर्म करो। तो मम्मा यही कहती है, यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हू बहू रिपीट होता है, और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, किसी को भी ये मालूम नहीं था, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, भल हू बहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी हो देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही किया था पर याद तो कुछ भी नहीं है, तो आपको ये नया लगा ना इस बार? तो कल्प पहले भी किया है पर अभी नया लगा, तो अगले कल्प में भी आपको नया ही लगेगा। परंतु जब उनको साक्षी हो देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना, दोनों की पहचान मिल गई इसलिए ऐसे नहीं समझना, अगर फेल होना ही है तो फिर चढ़े ही क्यों, ऐसे नहीं सोचो। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझे, फिर तो हर बात में ऐसे समझना चाहिए, फिर तो ऐसे ही भी समझे, अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों है? भाई कमाएंगे तो धन मिलेगा, तभी तो खाना मिलेगा ना, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों, अपने आप खाना आ जाएगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो? वैसे हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे? ना कई कहते ना, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है तो क्यों ना अभी वो सुख ले लेवे? जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना, अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है, इतनी पढ़ाई की और फेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसी बात नहीं होती है कि मेहनत की चलो फेल हो गया तो फेल माना फेल, लेकिन यहाँ इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, उसको कुछ न कुछ भविष्य में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है, बीज पड़ा है तो उसको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। यही ड्रामा है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। तो बलिहारी तो पुरुषार्थ की ही गाय हुई है। मम्मा ने आखिर यही जवाब दिया, बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाय हुई है। अब दूसरा छोटा सा मम्मा की मुरली है, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। मम्मा कहती है, पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में रखो, अवश्य रखो। क्या? जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है, भल करके धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है ना, वंडरफुल नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में वो न भी आए, परंतु सब का पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। बाबा ने एक बार ये भी इसका भी राज बताया था, क्योंकि बाबा से पूछा कि बाबा ये क्राइस्ट और बुद्ध और महावीर इतने भी धर्म पिताई हैं, चलो सबकी सतो रजो तमो स्थिति आ गई है, तो क्या ये बाबा का ज्ञान लेंगे संगम पर, चलो किसी और रूप में बाबा का ज्ञान लेंगे? तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल आएंगे, आएंगे और यहाँ से शक्ति भर के जाएंगे, तब जाके अगले कल्प में वो अपने धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु हाँ बाबा कहते, परंतु पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, अपने ही धर्म में फिर वो ऊंचा पद पाएंगे। क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। मामा कहती है अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, वो श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। बहुत गहरी बात है ये। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से योग भट्टी शुरू होगी, ये आखिरी योग भट्टी है इस सीजन की, और कलकत्ता से भाई बहने आ रहे हैं, कलकत्ता राय बगान स्ट्रीट, ये सबसे पुराना सेंटर कलकत्ता का, ये एल्गिन रोड और भांगूर उनसे भी पहले का ये सेंटर है बाबा के समय का, तो वहां से भाई बहने आ रहे हैं।